এরা হচ্ছে নিত্য তত্ত্ব। যদিও আমরা সামনে দেখছি যে উনি নেই, কিন্তু উনি নেই এটা নয়, উনি সর্বদাই আছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তিনি যদি না থাকেন তাহলে আমরা কি অসহায়, আমরা কি করে থাকতে পারি? এই জন্য গুরু বৈষ্ণবের কৃপা সর্বদাই আমাদের উপরে বর্ষিত হচ্ছে এবং তাদের কৃপার দ্বারাই আমরা জীবিত আছি। ছিল পরম গুরু মহারাজ, তিনি পুরুপদে নিবেদন ছিলেন, নিষ্কপট ভাবে গুরু সেবার আদর্শ তিনি নিজে আচরণ করে জগৎকে জানিয়েছিলেন। পরমগুরু মহারাজ দেখিয়েছেন যে গুরু সেবা কাহাকে বলেন। গুরুপদে যার রয়ে নিষ্ঠা ভক্তি, জগৎ তারকে ধরে সেই মহাশক্তি, এর জ্বলন্ত উদাহরণ তিনি তার জীবন্তরীতে ওটা দেখিয়েছেন। যখন নবদ্বীপে পরীক্ষ পানি নিয়ে গিয়েছেন,
ওখানে যাও না আপনার,
তখন নবদ্বীপের স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ প্রভুপদের বিরোধিতা করেছিলেন, এমনকি প্রভুপদের জীবন নাশ করার জন্য ওরা সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। চারদিকে ভিড় পাঠ্যেও ছড়া হতো, হতে লাগল পরমগুরু পরমগুরু নিত্য লীলা অপরেশন কৃষ্ণবাদ হস্ত শ্রীচরণ ভক্তি প্রজ্ঞান কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদকে বললেন, প্রভুপাদ চারিদিকে তো এরকম একটা বিপদ দেখা যাচ্ছে, তা আপনি একটা কাজ করুন, আপনার এই সন্ন্যাস বেশ আমাকে দিন আর আমার সাদা কাপড় আপনি পরিধান করুন, করে এখান থেকে আপনি কোনরকম ভাবে এখান থেকে চলে যান। সকলেই জানে যে প্রভুপাদ সন্ন্যাস বেশ, প্রভুপাদ একটুখানি কিন্তু কিন্তু করলেও তার নিবেদন বলছেন, এই জন্য ওটা তিনি মেনে নিলেন, তার সন্ন্যাস বেশ পরমগুরু মহারাজকে দিয়ে দিলেন। পরমগুরু মহারাজের সন্ন্যাস হয়ে গেল আর তার সারা কাপড় তিনি নিয়ে নিলেন। আর চারিদিকে হরিহত্তা হতে লাগলো, প্রভুপাদের উপরে ইস্পাতের সংকল্প, আর পরমগুরু মহারাজ কাউকে দিয়ে তিনি ওখান থেকে প্রভুপাদকে নিরাপদের স্থানে পৌঁছে দিলেন। পরমগুরু মহারাজের সন্ন্যাস বেশ দর্শন করে ওরাও মনে মনে ভাবলেন যে এমনি তো সরস্বতী ঠাকুর, কিন্তু কাছাকাছি যখন আসলেন দেখলেন যে না, পরবর্তীকালে সবাই দেখলেন যে না, তো এমনি তো প্রভুপাদ নন। যাই হোক, প্রভুপাদকে তিনি ওইভাবে রক্ষা করেছিলেন। এটি হচ্ছে গুরু সেবার আদর্শ। প্রভুপাদ বলতে তিনি সম্পূর্ণ নাম উচ্চারণ করতে পারতেন না, শিল মহারাজ প্রায় বলতেন, আর প্রভুপাদের সমাধিতে যখন বক্তৃতা দিতেন, সুতরাং প্রভুপাদের বা গুরু বৈষ্ণবগণের গৃহ অতিথি উদযাপন বা পালন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের বিচার এবং তাদের আদর্শ, গুরু সেবার আদর্শ, সেগুলোই আমাদের গ্রহণীয় এবং আচরণীয়। এটি হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবগণের গৃহ অতিথি পালন করার বিশেষ তাৎপর্য। আপনারা সকলে আমার উপরে কৃপা বর্ষণ করুন, আমার অনর্থ অহমিকা ইত্যাদি যা আছে অনর্থগুলো দূরীভূত হোক, আর গুরু সেবায় যেন আমি একনিষ্ঠ ভাবে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে উৎসর্গ করতে পারি, এই প্রার্থনা আমি জানাচ্ছি।
Them to their eternal understanding of their relationship with Krishna. So many calculations were made, and they were completely amazed. Therefore, they told the mother of this child that she should take very, very special care of this child. One incident occurred when he was a very small baby. His mother one day gave him an oral massage and placed him in the sun in a courtyard. At that time, she went a little distance away, but from the sky, one extraordinary event occurred. One very large eagle came down into this courtyard and suddenly captured the little baby in the eagle's talons and started flying up into the sky with the child baby. And suddenly his mother saw this, the neighbors saw this, and they began screaming and crying and running after the eagle, and in this way helplessly looking. But the eagle flew down in a nearby pond, and there in that pond were some small pieces of bark from a betel nut tree, and just like little boats, these pieces of bark were floating in the water, and suddenly this eagle came down and placed very nicely the baby lying in this little boat. So suddenly all the neighbors came there, and they took the baby in their arms. His mother, who was almost fainted and had left her body, she was returned to life and cradled the baby in her arms. And they understood that this is no ordinary child. So as this child grew, he was so beautiful, so extraordinary qualities, and his physical appearance was so pleasing and beautiful, that all the neighboring people and his family members, they gave him the nickname Jonah, which is short for Jyotsna, and Jyotsna means moonbeam, because he was so effulgent and shining. So as he grew into his childhood, he manifested extraordinary characters, intelligence, and when he went to school, he was very much inclined towards the Bhakti Shastra. One day, one of his teachers was lecturing on a verse from Sri Chaitanya Charitamrita, in which it is telling that the Swarup of Krishna is Atvaityan Paratattva. Atvaityan Paratattva, meaning non-dual knowledge. And so this teacher began to explain that, Sri Krishna is actually the absolute one supreme, Aham Brahmasmi. He is the transcendental one Brahman. And in the Mayavad conception, he began to explain that Krishna is without form, nirakar, nirvishesh, without qualities, nirgun. And at that time, Vinod Bihari was his name. He began to object to his teacher's explanation, and then he began to explain how Krishna is the Satyananda Vigraha, transcendental form of all bliss, all knowledge. And with so many smokers from Shastra, he presented to his teacher the personal conception of Krishna. And in this way, his teacher was very deeply impressed, and all the students were so much impressed. So later on, as he grew into his teens, one day, he had the opportunity to come to Sri Mayapur Dham, Navadvip Dham. When he came there to Navadvip Dham, he was accompanied by his two aunties, and actually they were the first and second female disciples of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. They brought their young nephew there to meet with Srila Prabhupada at the Gaur Purnima Utsav festival that was taking place there in 1915. This was just before Gaudiya Math really began to manifest. And Srila Prabhupada, at that time, was there with a number of persons to observe the Gaur Purnima festival. And then after the festival was completed, and most of the persons had gone back to their homes and villages, that Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada was lecturing, and a few people were sitting around him. And he began to explain that he had a strong desire to establish mats, Gaudiya mats, in every one of the nine islands of Navadvip Dham. He had a desire to establish preaching centers all throughout Bengal and all throughout India to preach the Shuddha Vaishnava ontological truths of Gaudiya Vaishnavism in the line of Chaitanya Mahaprabhu. And also, he had a desire that he would establish a printing press. And by this printing press, these transcendental bhakti shastras would be printed and distributed far and wide throughout all of India and the whole world in all different languages. So as the aunties of Vimalti Hari Prabhu were sitting there, and they were very amazed with this vision of Srila Prabhupada, but they questioned him, "Oh, Srila Prabhupada, this is very wonderful. All these plans. But we are wondering, how would it be possible that this can be done? Because now, in your mutt, you barely have enough brahmacharis to even ring the bell during the arti ceremony." So, then Srila Prabhupada, he spoke very gravely. And he said, "Oh, do you know the Hari Prabhu? He will manage all of the mutt. He will make all of these things happen." So Srila Prabhupada knew everything, even so many years before everything began to manifest. After this, Sri Srinivasa Hari Brahmachari was continuing with his education in his college, university. But actually, he was not so much interested in that education. And one day he was reading a sloka from Sri Chaitanya Charitamritam, and this sloka made a very deep impression on his mind. Paratubhuni bhumite manushya hoyma janmajar janma sarthak kori kore para upakar. In this sloka, Mahaprabhu is telling anyone who is taking their birth in Paratubhuni that first of all, they should make their life perfect. Janma sarthak kori. They should take advantage of this birth, of their human form of life, and execute pure bhakti and make their life perfect. And para upakar, they should do benefits for all others throughout the world. So in this way, thinking very deeply, meditating very deeply, Sri Vimalti Hari Prabhu, he decided that he had no need for an atheistic education in the material world, and just before his final examination, he left his university and he came to the lotus feet of Jagat Guru Srila Prabhupada and surrendered there at his lotus feet. So from the beginning of his mutt life, living in the mutt, in the early days of Gaudiya Mutt, it was very austere, very, very simple life. At that time, they had very little money, and sometimes they would not even have enough rice for everyone to eat. So one day, they were looking in the storehouse, and they found that there was only a small amount of rice to cook. So they took this bowl, and they prepared this rice, and they took some leaves from a tree, a nearby tree, which was a kind of vegetable. And they prepared a lot of this vegetable, and they sat together after offering this bowl and performing arti. They sat together and they were taking this simple prasad. And as Srila Prabhupada walked by, he saw them, he glanced at them. And Vimalti Hari glanced at Srila Prabhupada, and he told, "Oh, Srila Prabhupada, we are practicing Vairagya." So not to disturb the mind of Srila Prabhupada. In this way, Sri Vimalti Hari, he demonstrated the ideal life of a brahmachari. And he took on all the responsibilities. He became the superintendent of all the Gaudiya Mutts at that time. And he showed extraordinary qualities in Guru Seva. There are so many examples. I'm giving just one example. After the disappearance of Srila Gaurikishordas Babaji Maharaj, the beloved Gurudev of Srila Prabhupada, at that time, some years later, there was a very big flood. The Ganga was over flooding its banks. And at that time, the Samadhi of Srila Gaurikishordas Babaji Maharaj was located on the opposite side of the Ganga in Navadvip town, opposite to Mayapur Dham. So there was a threat that the Ganga was going to destroy many houses and such. And Srila Prabhupada was very much concerned that the samadhi of his beloved Gurudev would be protected properly. So he assigned Sri Vimalti Hari Prabhu along with some of the other mutt residents to go there. and under the direction of the Lord Hari, they excavated the entire samadhi in one piece, with all the earth surrounding it, etc. And they somehow or other, miraculously, brought this onto a boat, and they brought it across the Ganga, and brought it to Sri Mayapur Dham, at the place of Chaitanya Math. And there they installed the samadhi of Srila Gaurishodas Babaji Maharaj. There Srila Prabhupada received his beloved Guru Maharaj transcendental swarup, and he personally with his own hand performed the samadhi burial. In this way, such intimate service was done by the Murti Hari Prabhu. And there is one very extraordinary incident which was very famous amongst all of the god brothers who witnessed this incident. It was at a Gaur Purnima festival when there was a huge gathering of thousands of persons walking in procession on the Navadvipa Parikrama. And Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had arranged for there to be elephants and a very, very festive occasion. And they were walking through the middle of Navadvipa town. Now at that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's preaching was so powerful, it was so much a threat to the smarter brahmanas who were holding in their grip all of the society at that time and forcing them to give them all honor and respect and basically maintaining them economically. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spoke very strongly that only those who have the qualification of a real Vaishnava, they can be considered worshipable as brahmanas. And he demonstrated this by giving Brahman Diksha initiation to persons who were not necessarily coming from Brahman family lines. So this way the smarta brahmanas, they had one plot that they wanted to actually injure and even kill Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So they made a plan that they would stand in one area, and while this procession was coming, that they would stand on the rooftop, and they would throw down from the rooftop so many glass bottles and rocks and so many harmful objects. At that time, this procession was coming there, and suddenly, from all directions, this shower of stones and rocks came down from the sky, and all of these devotees, in a single moment, they started to think how they can save their life running here and there for shelter anywhere. But Srila Hari Prabhu, he took his own life into his hands and offered it at the feet of his beloved Gurudev. And he personally protected Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada and brought him into a nearby doorway to give him shelter there and to save his life. So as he went into this doorway, he closed the door, and inside of the doorway, he told Srila Prabhupada, "Now, I want to bring you to Mayapur. So please, give me your sannyas dress. I will take your dress, you take my nightcloth. And in this way, we can bring you very secretly back to Mayapur for safety." And at that time, Srila Prabhupada, he gave his sannyas dress to Vinodhi Hari Prabhu, he gave his standard in his hand, and Srila Vinodhi Hari risked his life to save the life of his Guru Maharaj. So he is very famous in this way from all the doctors that he was the ideal Guru Seva. He gave his life in the service of his Gurudev, and his entire life was a demonstration of complete surrender to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all of his Rupa Rupa Guru Maharaja. So on this transcendental disappearance day, I stand at the lotus feet of his most beloved servitor, our beloved Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, that I may have 1 ounce of faith and surrender at his lotus feet, one tiny little drop that he has unlimited. So I'm praying at his lotus feet that he will shower his mercy on all of us.
इसके पहले मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि चैतन्य गौड़ी मठ के साधारण संपादक इस मत भक्ति विज्ञान भारती महाराज आने वाले थे, उन्होंने कहा था, किंतु अभी चैतन्य गौड़ी मठ का दिल्ली में वहाँ पर काफी व्रत चल रहा है, बहुत व्यापक रूप में सुना यह चल रहा है, इसलिए उनको भी वहाँ से बुलाहट आई तो वहाँ पर चले गए चैतन्य गौरी मठ के और प्रतिनिधि स्वरूप गोविंद महाराज जी उस थोड़े से में गुरु महाराज जी के संबंध में हम लोगों को बतलाएंगे।
हम श्री गुरु श्री गुरु का पद कमल श्री गुरु नवैष्णव श्री रूपम शास्त्र जातम सर्वन रघुनाथम शास्त्रीतम सावधुतम हरिजन से कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पारण सर्वन रघुता श्री विशाखा सर्वप्रथम मैं मदीय परमारक्षकम गुरुदेव भक्ति ग्रहित माधव कृष्ण महाराज कोटि कोटि का प्रणाम करता हूं। उनका ही अभिन्न मूर्ति अभिन्न धर्म गुरुपाद प्रतिम मित्रिला प्रविष्ठवा श्रीमत भक्ति प्रस्थान की सपुष्टि महाराज जी के श्री चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए उनकी अधिक की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ। भक्ति वेदांत नारायण महर्ष जी श्री चरण में उपस्थित श्रीरंगीपात ब्रह्मचारी वर्ग भक्त मंडली मातृविंद सबको मैं प्रणाम करते हुए सबसे अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हम इन महापुरुष के शिवभाव तिथि को पालन करने के लिए यहाँ समर्पित हुए हैं। उनकी जीवन चरित्र अद्भुत है, उनकी गुरुनिष्ठा उनके भजन के प्रति निष्ठा ये हमारे शिक्षण है। हम अगर उनके जीवन चरित्र के एक कण मात्र भी आचरण कर सके अनुसरण कर सके तो हमारा जीवन धन्य से धन्य हो जाएगा। आप लोग सुनते आ रहे हैं उनके जीवन को, मैं तो अधिक कुछ कह ही नहीं सकता हूं। क्या श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सिद्ध प्रभुपाद नवचित हम परिक्रमा शुरू किया था उस समय के बाद ये हमारे गुरुवर्गों के मुख से हमने सुना अपर संप्रदाय लोग आउल बौल करता भजा जात करता है सब मिलकर के इसका विरोध किया था। क्यों? ये शुद्ध धारा अगर प्रचार हो जाए तो हम नीचे हो जाएंगे, इसीलिए अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इनका शुद्ध भक्ति धारा प्रचार में बाधा रहा, बहुत कुछ विरोध किया। नवद्वीप परिक्रमा में जब परमात्मा में गए बहुत धूमधाम के सहित उस समय श्रील प्रभुपाद आपने भक्त मंडली को एवं सन्यासी ब्रह्मचारियों को जब नवचित धाम परिक्रमा में परमात्मा में जा करके पहुंचा, उस समय को लोग विरोध किया। क्या विरोध? ऐसा विरोध कि प्राण संहार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया प्रभुपाद को। उस समय बड़े मुश्किल विपत्ति में पड़ गया था, लेकिन हमारे पूज्यवाद केशव सिंह महाराज, उस समय उनका ब्रह्मचारी नाम था विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। सब लोग हमारे गुरु महाराज की भी कभी कभी विनोद का शब्द प्रयोग करते थे, उनके विषय बोलते बोलते गुरु महाराज के विनोद का शब्द प्रयोग करते थे। विनोद का नाम से प्रसिद्ध थे उस समय। उन्होंने क्या क्या तुरंत प्रभुपाद जी के वेश को ले लिया और प्रभुपाद जी को अपना सफेद कपड़ा पहना दिया ताकि प्रभुपाद को पहचान ना पाए और मुझे ही प्रभुपाद मान करके जो हिंसा करे मेरे ऊपर हिंसा करे, मेरे ऊपर प्रहार करे, लेकिन आपने गुरु जी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई प्रहार ना पहुंचे। ये है गुरु निष्ठा। क्यों? अपने प्राण को देते हुए भी गुरु सेवा करते हैं। इस प्रकार से बहुत कुछ उनका प्रभुपाद के समय उनका क्या काम था, समस्त प्रभुपाद के जो चेतन के जितना संपत्ति था उसका देखभाल करना। हम जब शुरू शुरू मठ में आया छोटे अवस्था में, वहाँ के जितना लोग मुसलमान हो हिंदू हो सभी विनोद बाबू नाम बोलते थे, सभी उनके नाम से डरते थे घबराते थे। क्यों? उनका शासन ही उचित प्रकार था। अन्य भी पुरुष थे भक्ति प्रचार में निर्भीक पुरुष थे, अतः उनके विषय मुझे तो अधिक कुछ मालूम नहीं आए, फिर भी मैं दो शब्द और बोल करके समाप्त करता हूँ। महाप्रभु जी ने कहा कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास परिवर्तन वाले देह प्रेम धन। ये जगत में श्रीमन महापुरुष के परंपरा में आगत महापुरुष लोगों का आगमन का उद्देश्य पता है प्रेम धन जगत को वितरण करने के लिए। महापुरुष ने कहा प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। हम मानते हैं जगत में हमारा कोई धन संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, बाल नहीं है, अगर हम दरिद्र है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं जिनका कृष्ण प्रेम भी धन नहीं है वही दरिद्र है। हम जैसे दरिद्रों को कृष्ण प्रेम विहीन जीवों को कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति देने के लिए ये महापुरुषों का आगमन है। भक्ति के संतुपा के जितने भी गण हैं सब गोरख धाम से आगत पुरुष है। इनके अद्भुत अद्भुत क्रिया अद्भुत अद्भुत कर्म को देखते हुए हमें अनुभव होता है कि जगत का नहीं है, इस जगत के मनुष्य इस प्रकार काम नहीं कर सकता है। वो भी क्या शुद्ध धारा को प्रवाहित यथार्थ रखने के लिए अपना चेष्टा है इनका। श्रीमान महाप्रभु इस व्रत को आस्वादन करने के लिए आया था। माधुरी विरही गोपियों का जो भाव श्री राधायण प्रया महिमा कितनी सवा महिमा शंकर जगत पुत मधुरमा कितनी सवा मदिया सखन सच्चा मदन भवता कितनी सवा एकी लोहा समझ ली सचिगत पंच हिंदू हरिंदू। श्री राधारानी के प्रणय महिमा किस प्रकार है और मेरा जो मधुरिमा कैसा है, जिस अद्भुत मधुरिमा को स्वयं राधारानी आस्वादन करती रहती है उसको मैं नहीं आस्वादन कर पाता। और सखंड चैसा मदन भवता एकी लोभा और राधारानी का प्रेम किस प्रकार है, उस प्रेम को
राधा ने मुझे प्रेम करते हुए क्या सुख अनुभव करता है। एक दिन प्रकार वस्तु को साक्षात ब्रजेंद्रानंद कृष्ण ने आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में राधारणी के भाव कांति को लेकर के जगत में अवतीर्ण हुआ है। जो कि ब्रज के अंतपुर में ही एक रस को आस्वादन किया जा सकता है। उस ब्रज रस को आस्वादन कराने के लिए एवं स्वयं आस्वादन करने के लिए क्या हुआ, महापुरुष स्वयं आया और महापुरुष इसी ब्रज रस को प्रेम के लिए वार्ता को रूप स्वामी के हृदय में प्रकट करते हुए जगत में प्रचार किया। उसी परंपरा में हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सतगुरु सिंह प्रभुपाद आए हुए, उसी श्री भक्ति सिद्धांत सतगुरु सिंह ठाकुर के पार्षद के अन्नतम निष्प्रिया प्रविष्ट विश्वास विश्वास भक्ति प्रचार केशव महाराज केशवपुर सिंह महाराज के लिए उसी प्रेम को दान करने के लिए जगत में आविर्भूत हुआ है और उसका नमूना आप लोग देख ही रहा है। समस्त जगत वासी को उनका ही कृपा पात्र पूज्य पद महाराज समस्त जगत वासी को प्रेम दान करके प्रेम के बन्ना बहाते हुए चल रहा है। यही तो अद्भुत है उनके महिमा। आंखों के सामने देखते हुए तो हमें जानना चाहिए, हमें शास्त्र ज्ञान नहीं, लेकिन आंखों के सामने देखते हुए तो अनुभव होता है। तो मैं अधिक समय नहीं देते हुए निश्चिला प्रभु विश्वास भक्ति प्रज्ञान के सबदेव से महाराज जी के चरण में अपना श्रद्धांजलि पुष्पांजलि ज्ञापन करते हुए और पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरण में पुनः पुनः संगवत प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। मैं केवल महाराज जी का आज्ञा को ही पालन नहीं चाहूंगा।
नमो विष्णुपादाय गौरप्रसाद श्रीमद्भक्ति प्रमोदाय गुरुवैष्णव नारायण नमस्कृतं करोति वाचालं पङ्गुं नमोति गुरुं यत्कृपासमन्दे परमानन्दमाधवम् பற்றிய அவசமாகவும் நம்மள வேசங்கள் சுமார் சுஞ்சர் மாஸ்டர் சிவாஞ்சே சில பக்தி பிரமர் கோஸ்வாமி மகாராஜ் இன்ஸ்ட்ரக்டிங் குரு மகாஜி குரு பற்றி அவசமாக நம்மள வேசங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேஷன் சிவாஞ்சே சிவாஞ்சே பக்தி சத்யா கேசவ் மகாராஜ் on his philosophy. Next, I offer my humble obeisances to His Divine Grace, Srila Bhakti Vedanta Narayan Maharaj. Actually, I am very conscious, considering myself very fortunate. I am in this pavitra with the most pure Mathura Dham. Today is the disappearance day of Mahapurush, my Guru Varga, His Divine Grace, Srila Bhakti Prajnan Keshav Goswami Maharaj. I am very fortunate to be able to speak something for him. And because French is represented by both in Hindi and Bengali, Srila Bhakti Prajnan Keshav Maharaj showed extraordinary charisma and courage when, you know, he did on one instance offer his life for a spiritual master. That was explained. So this is the, he showed the real idea of how a disciple should be, a disciple thinks. Immediately, he had no count of giving his own life for the service of his Guru Dev, for the life of his Guru Dev. This is not an easy matter. This is something which we can learn. Next also, We know that he has been unstable already, because in the beginning, when Chaitanya Mahaprabhu was established, he actually showed his remarkable administrative skills. This is explained in many Vigasas. So we know from that he was very brilliant administrator. Not only that, Shastra Vitaraga, the Bhakti Kesha Prachandesha Maharaj, extraordinary spiritual scholastic knowledge, spiritual scholastic knowledge. At one time, some of Prabhupada's disciples, after they left, two of them were not mentioned in it, they started writing some different books in opposition to the Siddhanta, the pure, Mahadvaita's pure devotional Siddhanta of Prabhupada, Srila Prabhupada. So, Bhakti Prajnana Kesava Maharaj, I think one or two are got to it, but he's mostly in the form of, he wrote against, I think this book was Achintya Veda Veda Tattva, written by one of his disciples. So he's in opposition, in defiance to establishment of something non-devotional. He completely rebuffed such an attempt. This is extraordinary, the way he shows how to stand in how to follow Srila Gurudev completely. So, another point is, it brings me to one sloka in Srimad Bhagavatam. Arishmiti Krishna Padara Vyando, Vinoti Chitam, Vinoti Chitam Tanoti, Sattva Chitam, Paramatma Bhaktim, Jnana Vijnana Virati Chitam. We have come to this line to completely remember Sri Krishna. Arishmiti Krishna Padara Vyando, we have come to completely remember Krishna all the time. So how to remember Krishna all the time? When you remember Krishna all the time, it says Jnana Vijnana, whereas it comes, it utterly comes, it flows. But how do we remember Krishna all the time? So the secret is, of the sloka, that unless Guru gives Kripa, we cannot remember Sri Krishna. So, today in Sri Bhakti, Sri Guru Tattva, Shiksha Guru, as my interesting principle to Vastra, I completely swear my allegiances again and again, and thank for his mercy on his philosophy. Once again, for this class,
बारह बज रहा है, भोग भी ठाकुर जी का लग रहा है, इसलिए हम लोग संक्षेप में अभी दो चार बातें कहकर वक्तव्य समाप्त करूंगा। फिर गुरु भागवत में से चरणों में इसकी अंजलि पुष्पांजलि देकर सब वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे। वो टाइम की जो है वो है कि पकड़ जो ठाकुर जी वेरी सोन वी आर गोइंग टू गिव पुष्पांजलि इन गॉड की डॉग और जी महाप्रभु वो आई एम टेलिंग समथिंग फ्यू वर्ड इन हिज लिरिक्स थोड़ी सी बातें हम ला रहे हैं। इस समय गुरु महाराज जी बात बाजार गौरव मठ में प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद में 1942 या 47 गुरु महाराज जी उसके पास शिखर महाराज जी, उसके पास और जितने थे गिरी महाराज जी, उसके पास और सब वैष्णव लोग शुक्र से चले आए और उन्होंने बीच में उन्होंने आश्रम बनाया। गौरी विधान समिति की स्थापना गुरु महाराज जी ने 1942 की। उस समय उनके पास में गुरु भाई लोग भी करीब 30-40 आदमी थे। भवानी के भाड़ में कुछ नहीं था, भवानी भाड़े कुछ छो ऐसी पैसा समझे नहीं जो ऐसा लोग किसी को है प्रसाद इत्यादि व्यवस्था करना कोई भी व्यवस्था नहीं की। और उस समय में कमरे में बैठे थे 5,000 गोली मठ में नहीं बहुत पढ़ा ले वहीं पर जहाँ गोली विधान समिति की स्थापना की थी। और घर में बैठ करके खाद के ऊपर में पैर पर पैर रख करके ऐसे और कुछ सोच रहे थे। इतने में सुना जो प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूज्य बादनी लीला प्रवीषम विष्णुपाद विष्णु भक्ति वैद्य माधव गोस्वामी महाराज के गुरु भाई और अपना संबंधी भी चक्रवर्ती नारायण मुखर्जी, नारायण मुखर्जी पहुंच गए। उनको जब तक संदेश केला और सब चीजें अच्छी चीज नहीं दी जाएगी पंतुआ तब तक उनकी सेवा नहीं होती। और गुरु महाराज जी जानते थे ये ब्राह्मण है और इनको मिठाई इत्यादि कुछ खिलाना है काशी के लिए भी अंतर शुद्ध संदेश।